नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग के कॉन्फ्रेंस के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। बदलते समय में हम सब अनेकों बदलाव देख रहे हैं। ऐसे में एक क्षेत्र जहां पर ये समय सबके लिए मुश्किल भरा या चैलेंजिंग रहा है, वो है हमारे बच्चों के लिए। बहुत ही जल्दी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स ने इस बदलते परिवेश को समझा और अपने काम करने के तरीके को बदल लिया। यानी जहां पर हम क्लासरूम टीचिंग मोड्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थे, अब हम ऑनलाइन मोड पर आ गए। अब जैसे ही ऑनलाइन मोड पर आए, क्लासेस तो चलने लगे, मगर इसके साथ साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आए। अब इन चैलेंजेस को आप चैलेंज समझकर क्रिप करते हुए रह सकते हैं, या फिर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। कहना जितना आसान है, क्या करना भी इतना आसान है? तो इसी सेशन को आज के विषय के रूप में हम लेके जा रहे हैं, यानी जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदलें। चेंजिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज की जानी मानी हस्ती ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी है। दीदी, आपका स्वागत है।
ओम शांति।
पहले तो ये दीदी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। एक तो मन के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, टीचर्स के लिए अनसर्टेनिटी अलग है और बच्चों के लिए अनसर्टेनिटी अलग है, और ऐसे में सारी ही एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले लोग अलग अलग तरीके से इन सिचुएशंस को देख रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, ये जो बदलाव आता है इन जनरल सभी के लाइफ में आता होगा, तो क्या उन चैलेंजेस को हम फेस वैल्यू पे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेना ठीक है?
उसको चैलेंज बोले या उसको जस्ट एक सिचुएशन बोले, एक्चुअली वो सिर्फ जीवन की एक सिचुएशन है ना। हम उसको जितना शब्द बदलते जाएंगे तो वो चीज का साइज और वेट बदलता जाएगा। यूसी, अगर हम किसी चीज को बोलते हैं ये एक छोटी सी बात है जो जीवन में आई है, तो वो जरा छोटी सी ही लगती है। या हम कहते हैं ये एक जीवन की एक सिचुएशन है जो आई है, वो भी नॉर्मल लगती है। फिर हम कहते हैं ये एक चैलेंज आया है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़ा फील होने लगता है। फिर कुछ लोग कहते हैं ये जीवन में एक क्राइसिस आया है, फिर वो और बड़ा फील होने लगता है। सो इट्स आर चॉइस कि हम उसको कितना मैग्निफाई इन आर माइंड। जो वो बाहर है वो तो उतना ही है, उसका साइज नहीं चेंज होता जो सिचुएशन है, लेकिन हम उसको लेबल्स कौन से अटैच करते हैं एंड उसको किस भाषा में उसको परसीव करते हैं, बिकॉज द माइंड परसीव्स द सिचुएशन ना। आप देखो, एक ही घर में चार लोग रहते हैं और उस घर में एक सिचुएशन आती है, लेकिन चारों लोग उसको एक अलग तरह से देखते हैं। एक कहता है इतनी बड़ी बात आई है, कोई कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, तीसरा कहता है ये तो आती रहती है, मतलब जीवन में ऐसा होता रहता है, चौथा कहता है कौन सी बात आई है, मतलब इसमें कोई बात का है। सो इवन इन वन हाउस फोर पीपल विल परसीव द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। तो बात का कभी कोई साइज ही नहीं होता, सिचुएशन का कोई साइज नहीं होता है, वो साइज डिसाइड करता है हमारा मन। तो हमारा मन उस बात को जितना छोटा बनाए, उतना उस बात को फेस करना, उस बात को इजीली क्रॉस करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। और हमारा मन उसको जितना बड़ा बनाए तो बात बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं, फिर वो बात हम पर हावी हो जाती है। अगर हम बात को छोटा रखें, खुद को ऊपर रखें, तो हम बात पर हावी हो जाएंगे। सो अ लॉट ऑफ मैग्निफिकेशन हैपेंस हियर। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि इवन अगर जीवन में कोई सो कॉल्ड क्राइसिस भी आया हो, जिसको सारी दुनिया भी क्राइसिस बोले, तो हमें सिखाते हैं कि आप उसको बोलो छोटी सी बात आई है, ये तो सहज क्रॉस हो जाएगी। जस्ट टॉकिंग लाइक दैट इनसाइड इन आर माइंड, दूसरों से नहीं, इन आर माइंड, इट गिव्स अस द पावर टू फेस द सिचुएशन। तो बात का साइज हम खुद ही डिसाइड करेंगे।
जी, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में हमने ये चीज देखा कि बहुत क्विकली लोगों ने अडैप्ट कर लिया। सब कुछ ऑनलाइन करने लग गए, बच्चे स्कूल ऑनलाइन करने लगे, एक्टिविटीज ऑनलाइन होने लगी। बेशक स्कूल के वर्किंग आवर्स कम कर दिए, बट घर बैठे लोग अपने एजुकेशन को मिस आउट नहीं करें, इसके लिए अक्रॉस यूनिवर्सिटीज सारे एजुकेशन फील्ड में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा। शायद ही कोई और इंडस्ट्री इतनी जल्दी अडैप्ट नहीं कर पाई जितना एजुकेशन इंडस्ट्री ने अडैप्ट किया। तो इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगों ने देखा और सोचा कि चलो ये नहीं तो कुछ ऐसा करते हैं। क्या हर बार हम लाइफ के ऐसे छोटे मोटे सिचुएशन, जैसे आप कह रहे थे उस चैलेंज को आप सिचुएशन भी समझ सकते हो, तो सिचुएशन को क्या हम ऐसे ही एक न्यू पर्सपेक्टिव से, चलो इसके बारे में कुछ और किया जा सकता है क्या, ऐसे सोचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो वो कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं?
जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सिचुएशन को क्वेश्चन करना, विच मीन्स द माइंड एंड इंटेलेक्ट क्वेश्चंस अलॉट, प्रश्न चित करते हैं। प्रश्न मतलब क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, इसमें गलती किसकी थी, कौन इसका जिम्मेवार था। तो वी आर चर्निंग अबाउट व्हाई इट हैज हैपेंड, हाउ कुड इट हैपन, व्हाट विल बी द फ्यूचर। तो हम प्रश्नों में घिरे जाते हैं, और जितना हम प्रश्न करते रहते हैं तो यहाँ जो माइंड है वो क्लटर हो जाता है, मतलब बहुत शोर मचने लगता है। फिर वो सिर्फ हमारे मन में नहीं रहता, वो हमारे वर्ड्स में भी आता है, ऐसे कैसे हो गया, किसकी वजह से, अब ये कब तक चलेगा, कितने साल ऐसे बंद रहेगा, ऐसे होगा तो फिर क्या भविष्य है, बच्चों का तो कितना नुकसान हो रहा है। मतलब एवरी थॉट जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल थॉट बोलते हैं, इट्स अ लो वाइब्रेशन थॉट, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क करती जा रही है। तो जितना यहाँ नॉइज आएगी तो उतना सोल्यूशन दिखाई नहीं देगा। सोल्यूशन देखने के लिए एक साइलेंट माइंड चाहिए। कई बार सोल्यूशन सामने खड़ा होता है और हमें फिर भी नहीं दिखाई देता, फिर कोई और सजेस्ट करता है तो हम बोलते हैं अरे ये बात मुझे क्यों नहीं क्लिक हुई कि ये ऐसे कर सकते थे, इनको क्यों क्लिक हुई। क्योंकि जो दूसरा है ना वो डिटैच्ड है उस सीन से, तो वो हमारे घर आता है और हम सब इंटेंगल्ड होते हैं, ये ऐसे ऐसे, वो बाहर से आता है डिटैच्ड और बोलते हैं अरे इसमें तो ऐसे कर लो। सो दैट इज द क्वालिटी दैट इज नीडेड, डिटैच्ड फ्रॉम द सीन। डिटैच्ड मतलब यहाँ साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा। साक्षी मीन्स डोंट गेट इंटेंगल्ड इन क्वेश्चंस, पहले साइलेंस योर माइंड। और जब हम माइंड को साइलेंट करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर वर्क करती है, हमारी क्रिएटिविटी वर्क करती है, और फिर सोल्यूशन सामने दिखाई दे देता है। कई बार सोल्यूशन इमीजिएटली मिल सकता है, कई बार सोल्यूशन हो सकता है इमीडिएट कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है कि माइंड को पहले साइलेंट रखो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग नीडेड इन एवरी सिचुएशन। इन एवरी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम जनरली क्या करते हैं, पहले सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मतलब परिस्थिति को किसी तरह हम ठीक करें, कंट्रोल करें, चेंज करें। हमेशा पहले ध्यान अपनी स्थिति का करना चाहिए कि पहले मेरा मन ठीक रहे, माई माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू बी फाइन, नाउ आई विल एंटर इन टू द सिचुएशन। तो जब स्थिति सही होती है तो परिस्थिति छोटी लगती है, क्योंकि हमारी स्थिति सही होगी मतलब हायर वाइब्रेशन पे गए, परिस्थिति छोटी लगती है, हम डिटैच्ड हो जाते हैं, मतलब हम सिचुएशन के वाइब्रेशन में इंटेंगल नहीं होते, हम काम एंड स्टेबिलिटी के वाइब्रेशन पे होते हैं। तो वाइब्रेशन से डिटैच हो गए ना, सिचुएशन से दूर नहीं होते। लोग डिटैचमेंट का मीनिंग ठीक नहीं लेते, को लगता है डिटैचमेंट मतलब अच्छा फिर छोड़ दो, इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता करना। सिचुएशन से डिटैच नहीं, सिचुएशन की वाइब्रेशन से डिटैच, और अपनी एक वाइब्रेशन क्रिएट करें, तो दैट क्रिएटिविटी विल बी देयर। एंड जब वो होगा तो सोल्यूशन ढूंढना, सोल्यूशन सामने आकर ऐसे खड़े हो जाएगा। और अगर दो दिन लग भी गए, कई बार दो महीने भी लग सकते हैं नई सोल्यूशन मिल रहा है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ठीक रखें, ये ठीक तो सोल्यूशन जरूर मिलेगा उसका।
जी, जब आप इस एग्जाम्पल को दे रहे थे तो आजकल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए भी लोग ऐसी ही बात करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स में मतलब कोई नई चीज नहीं हो रही है, आप उस चीज को जो आपके सामने है उससे हटकर सोच रहे हैं कि चलो ऊपर से देखते हैं इस चीज को, एक डिटैच्ड ऑब्जर्व के रूप में। अब एक और बात जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये जो करंट टाइम्स हैं इसमें एडुटेक ने बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए कि एडुटेक सेक्टर ने ऐसी ग्रोथ की है जो किसी ने गैस भी नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ होगा, और बहुत सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना भी शुरू किया। अब जब हम इन बदलते हुए परिवेशों में आए हैं, अब इनके सामने हम नए चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि ये पहले से डिजाइन नहीं था, हम रेगुलर स्कूल गोइंग एटमोस्फियर से, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से, उसी परिवेश में हम बहुत ज्यादा अपने आप को अडेप्ट कर चुके थे। अब जब ये नई चीज आई है, तब हम देख रहे हैं कि हम कुछ नए चैलेंजेस फेस करते हैं। इसमें मैं दो अलग अलग प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। पहला तो बच्चों से रिलेटेड है। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके क्लासेस, एग्जाम सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे एक चीज उनमें देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। तो माता पिता को अक्सर लगता है कि भाई इनके लिए तो हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना एडुटेक का सॉफ्टवेयर खरीदा और इनको इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे में एक नया चैलेंज लगता है। आजकल ये टर्म्स भी हम सुनने लगे हैं, जूम फटीग और ये सारी चीजें कॉमन होती जा रही हैं। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए ये हम नहीं जानते। तो नई टेक्नोलॉजी जो चैलेंज आई, चैलेंज के रूप में एक अपॉर्चुनिटी आई, उसे टेक्नोलॉजी से यूज करके हमने यूज तो करना शुरू किया, बट अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें पता चल रहे हैं, तो अब हमें लगता है फिर नया चैलेंज है। तो ऐसे में लोगों ने टेक्नोलॉजी को तो अडेप्ट कर लिया, बट अपने आप को अडेप्ट नहीं किया कि हमें क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं।
मेन चीज ये है कि जैसे ही हमने ऑनलाइन करना शुरू किया तो हमने बाहर एक सोल्यूशन तो ढूंढ लिया, एंड इट वाज इजी ना कि ठीक है हम स्कूल नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था उसके, टीचर्स को कुछ को सीखना पड़ा ऑनलाइन कैसे करना है, बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर गए क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अभी। लेकिन मन में बहुतों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को, एंड इवन नाउ वी सी कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स, नॉट सो मच चिल्ड्रन, लेकिन पेरेंट्स एंड टीचर्स कहते हैं हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये ऐसे कोई पढ़ा जा रहा है, ये इस दो साल में तो इनका बहुत लॉस हो जाएगा। नाउ दिस इज वेयर द इशू इज कि सोल्यूशन बाहर तो ढूंढा लेकिन माइंड अभी तक उस सोल्यूशन को रेजिस्ट कर रहा है और माइंड उस सोल्यूशन को ये एनर्जी दे रहा है कि ये तो सही नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी बाहर से पहले अंदर ठीक करना पड़ता है, क्योंकि अब बाहर टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन वाइब्रेशन ही अच्छी नहीं है, स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो रहा है उस बात का, एंग्जाइटी बहुत क्रिएट हो रही है पेरेंट्स के अंदर, बच्चों में उतनी नहीं, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा उसकी एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, टीचर्स को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों का तो बहुत लॉस हो रहा है, ये तो पता नहीं इस दो साल में कमजोरी ना हो जाए, मतलब देयर इज लॉट ऑफ एंग्शियसनेस कि ये क्या हो रहा होगा। जब इतना स्ट्रेस होता है किसी बात का और पेरेंटल स्ट्रेस भी उस तरह से क्रिएट होता है तो उसके वाइब्रेशन भी बच्चों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जिस तरह से स्कूल में स्टडी कर सकता है इट कैन नॉट बी द सेम ऑनलाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन फिर वही तो सिचुएशन है कि इस समय हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो कभी थोड़ा इधर देखेंगे, कभी थोड़ा उधर देखेंगे, कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। बच्चों को क्यों लेना है, हम तो बड़ों को देखते हैं सारा दिन वेबिनार पे। अगर हम यही सेशन, जब हम सेशंस करते हैं वेबिनार्स पे, अगर हम इनको ऑडिटोरियम्स में करें, हॉल्स में करें, कोई क्लोज्ड कमरे में करें, इतनी कॉन्सेंट्रेशन से सारे बैठते हैं कि एक घंटा बीत जाए तो कोई इधर का उधर नहीं देखता है, मतलब बिकॉज एनर्जी क्रिएट होती है ना, एक रूम की एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब वही सभी लोग, सेम लोग, सेम हम सब लोग, हम वेबिनार कर रहे हैं, कोई 5 मिनट बाद नीचे देख रहा है, कोई सोचता है चाय कॉफी साथ में पी जा सकती है, कोई बीच में अपना फोन भी चेक कर लेता है, कोई तो कैमरा ऑफ करके कुछ और काम करके भी वापस आ जाते हैं। सो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग अबाउट चिल्ड्रेन, वो तो बच्चे हैं, ये तो हम बड़े कर ले रहे हैं ये सब कुछ, बट हमें लगता है कि ठीक है दिस इज अ पार्ट ऑफ इट ना, मतलब उनके पास ऑप्शन है कि वो कैमरा बंद करके कहीं भी जाके आ सके, दे आर गोइंग टू यूज दैट ऑप्शन, वी कांट गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। न्यू सिचुएशन, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड उस सिचुएशन के साथ जो थोड़ी सी बातें आएंगी उसको एक्सेप्ट करें। हम रेजिस्ट करेंगे और हम बोलेंगे नहीं, आप हिले कैसे, आपने इधर के उधर देखा कैसे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये सिर्फ हमारे स्ट्रेस को बढ़ाएगा और उनको भी स्ट्रेस्ड कर देगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जरूरी नहीं है कि ये उतनी एकाग्रता से बैठ सकते हैं जितना वो स्कूल में बैठ सकते हैं, वो हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, हम दो सिचुएशंस का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, वी शुड नॉट कंपेयर, हमें सिर्फ ये फोकस करना है ऑनलाइन पढ़ना है। लेकिन बच्चा है, उस बच्चे ने भी कभी 6-6 घंटा स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं, तो उनको हम ये सोचें कि ये उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, दैट्स नॉट द पॉइंट, उनके लिए कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं, कितना उनके लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और अगर वो थोड़ी देर थक जाते हैं और नहीं ऑन करते, इट्स परफेक्टली फाइन. यू नो, डोंट गो अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग. एंड फिर कुछ हम ऐसी चीजें रोज करें जिससे उनकी स्थिति बेटर हो, क्योंकि वो सारा दिन एक पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं, एक मशीन टू पर्सन कनेक्ट हो रहा है उनका. तो हम उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हम सुबह सभी इकट्ठे मिलकर प्राणायाम कर लें, आईज की एक्सरसाइज कर लें, स्पाइन की एक्सरसाइज कर लें, नेक की एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें जिससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, स्टिल बैठ जाएं, क्योंकि हम लगता है बच्चे मेडिटेशन नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, आप 10 मिनट सिर्फ स्टिल बैठो, सिर्फ आप चौंकड़ी मारो और स्टिल बैठ जाओ एंड जस्ट डीप ब्रीदिंग इट. उतना तो हर बच्चा कर सकता है. तो लेट्स डू दी अदर थिंग्स. तो जैसे हमारा कोई प्रोफेशन होता है, उसके कोई बातें होती हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना. जैसे आज डॉक्टर्स हैं, अब पहले डॉक्टर्स होते थे, आज उनको डबल मास्क भी पहनना पड़ता है, आज उनको शील्ड भी पहननी पड़ती है, आज उनको वो पीपी किट भी पहननी पड़ती है, बट आर दे स्टिल डूइंग देयर वर्क? दे कैन जस्ट सिट बैक एंड से इतनी गर्मी है इसमें हम नहीं पहन सकते. पावर टू अडैप्ट, पावर टू अडैप्ट हम सबके पास है, लेकिन उसको कंपैरिजन नहीं करना है, उसको इस सिचुएशन को एज इट इज देखकर, एज इट इज कि दिस इज आवर सिचुएशन, इसमें हमें बेस्ट क्या करना है, सिचुएशन को कंपेयर ना करें, सिचुएशन के बारे में कंप्लेंट ना करें. दीज आर ऑल आर डिप्लीटर्स, कंपेरिजन, कंप्लेनिंग एंड थिंकिंग कि दिस इज अ लॉस, इसमें नुकसान हो रहा है हमारे बच्चे का. मतलब अच्छा होना भी हो तो हम उसको बोलेंगे नहीं ये नुकसान ही हो रहा है, इसका नुकसान ही हो रहा है. ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स एंड हाई एनर्जी टू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग. तो जो चीज अच्छी नहीं भी होती ना, वो भी बेटर बन जाती है अगर मन की स्थिति ठीक हो तो.
जी, जैसे आपने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ये दे दिया कि ये बच्चों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ों के लिए है. मैं आज ही किन्हीं बच्चों से बातचीत कर रहा था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि बहुत बार मेरे पेरेंट्स ही मेरे को बोलते हैं क्या पता तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो. अब बच्चों को इस चीज से बहुत ही ज्यादा हर्ट महसूस होते हैं कि भाई पहले तो हम इतने घंटे बैठ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. तो ऐसे में बच्चों को जो चीज समझ में आ रही है वो समझ में आ रही है, बट बड़ों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज आपने बताई. बट एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं या फिर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं, हमें क्या करने की जरूरत है? क्योंकि मैं कुछ बच्चों से ये बातचीत कर रहा था, तो मैं ये सुन रहा था कि एक क्लास पूरा होता है, दूसरा क्लास फिर शुरू हो जाता है, ना उठने का टाइम मिलता है, ना पानी पीने का टाइम मिलता है, कैमरा हम बंद नहीं कर सकते, बंद करते ही तुरंत पूछते हैं कि कैमरा चालू करो. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए भी नई है. तो ऐसे में हम बच्चों की मदद करने के लिए एज एजुकेटर्स हमें क्या करना चाहिए इन बदलते हुए दौरों में? ये जो चैलेंजेस हैं, इनको क्या हम कुछ क्रिएटिव करवाने में, जैसे आपने पेरेंट्स को कहा कि वो एक्सरसाइजेस करवाएं या कुछ ऐसा कराएं, ऐसे में एजुकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं?
एक्चुअली जब हमने वर्क फ्रॉम होम किया या स्टडी फ्रॉम होम किया, सबको लगा कि ये इजी हो जाएगा ना, लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी. और स्टार्टिंग में तो सबने ये कहना शुरू किया अभी ऐसे ही होना चाहिए, लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए, वी डोंट वांट टू ट्रैवल एंड गो बैक. बट विद इन अ मंथ और टू मंथ दैट वाज अप, वो पीरियड खत्म हो गया. कहते हमें वापिस जाना है, हमें ऑफिस वापिस जाना है. वाई? बिकॉज वी हैव टू गिव मोर थॉट टू इट कि ये कैसे करना है वर्क फ्रॉम होम, कैसे करना है स्टडी फ्रॉम होम. अब हमने शायद ऐसा किया कि जिस तरह से हम स्कूल में स्टडी कर रहे थे कि एक सब्जेक्ट, फिर उसकी घंटी बजी तो दूसरा सब्जेक्ट, उसकी घंटी बजी तो तीसरा, तो हमने सेम चीज ऑनलाइन कर ली. सो मे बी वी नीड टू स्टिल थिंक ओवर इट कि क्या एक माइंड को, ब्रेन को, बॉडी को सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर नीडेड अ लिटिल ब्रेक इन बिटवीन एवरी सेशन, नीडेड अ लिटिल एक्सरसाइज इन बिटवीन एवरी सेशन, and most important needed a little more interesting things. क्योंकि वही चीज जो एक क्लासरूम में आपको होल्ड कर सकती है, वो सेम चीज ऑनलाइन नहीं होल्ड कर पाती है. क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं. सबसे पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है वाइब्रेशन. वाइब्रेशन एक एनर्जी. जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर की एक एनर्जी होती है, हमारे साथ सारे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना इजी करती है. तो इसलिए वो एलिमेंट मिसिंग है तो हमें उस एलिमेंट को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, पेरेंट्स वो टाइप की एनर्जी क्रिएट करें, उनको एक उस तरह की फीलिंग करें, और फिर हम थोड़े से क्रिएटिव एलिमेंट्स शायद टीचर्स क्रिएट करें या फिर पेरेंट्स क्रिएट कर लें उस बच्चे के लिए, या बच्चे खुद भी सोच सकते हैं, बच्चे खुद भी सोच करके सजेस्ट कर सकते हैं कि हम 5 मिनट ये कर लें, बीच में हमें कुछ थोड़ा सा, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू सिटिंग। आज अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में है, दे आर यूज टू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो सुबह बैठते हैं रात को उठते हैं कंप्यूटर से, बट आदत पड़ जाती है ना कुछ करने की, तो बच्चों को तो नई आदत है। सो दैट्स वाई दोज क्रिएटिव एलिमेंट्स आर नीडेड, दे आर वेरी वेरी नीडेड। तो इसलिए अलॉन्ग विद द सोल्यूशन वी हैड टू ऑल्सो कीप चेकिंग कि ये सोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकल रहा है, एंड फीडबैक उन बच्चों से ही लेना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि वो हमारे क्लाइंट है ना उस प्रोडक्ट के, तो जो क्लाइंट है उसका क्लाइंट फीडबैक तो लेना चाहिए कि आप सजेशंस दीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट ऑल इज डेफिनेटली नीडेड, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड नॉट वरी टू मच, क्योंकि हमें ये देखना होगा, सपोज मैं 100% स्टडी कर सकती हूँ स्कूल जाने से, तो ठीक है मेरा अभी 100% नहीं हो रहा है, नेवर माइंड 100 की जगह 80 हो रहा होगा, बट देन नेवर माइंड ना, पूरे देश के सभी बच्चों का सेम ही 80 हो रहा है ना, डजंट मैटर, कोई हमारे से आगे तो निकल के जा नहीं रहा। सो व्हाई आर वी पैनिकिंग सो मच, सिचुएशन है, उस सिचुएशन के सामने कि थोड़ा 10% कम स्टडी करना या कुछ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों की इस समय कोपिंग स्किल्स बढ़ रही है, ये सबको लगता है कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है इस साल, विच इज नॉट ट्रू। बच्चों ने कितना ज्यादा अडेप्ट किया है इतनी चीजों के लिए जो तो वो पूरे जीवन में ना करते नहीं तो। एक्चुअली दिस इज सो मच ऑफ अ लर्निंग फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चा एक दिन भी घर नहीं बैठ सकता है, हर थोड़ी देर बोलता है मैं नीचे जाऊं, मैं खेलने जाऊं, मैं बाहर जाऊं, आज वो इतने महीने बैठे एट अ स्ट्रेच, कितना कोपिंग स्किल है ये। तो वो स्किल्स डेवलप हुए हैं जो वैसे नॉर्मल लाइफ में न डेवलप होते। तो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस। उनकी रेजिलियंस बढ़ी है, उनके पास पहली बार जीवन में इतनी बातें आई हैं विच इज नॉट देयर वे एंड दे आर स्टिल मैनेजिंग विद इट। सो ये तो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाएगा। हर चीज पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई वन पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो पेरेंट्स नीड टू फोकस ऑन दैट, क्या चिल्ड्रन आर बिकमिंग इमोशनली स्ट्रांगर। So don't worry, just see that they are making the best out of it, that's all. But don't compare it to what is happening in school. And jaise aapne kaha, trust. Agar wo baar baar aake dekhenge ki screen pe aap sachi mein pad rahe ho ya screen pe aap kuch to nahi aur nahi kar rahe, ya beech mein aap isko minimize karke kuch aur ko to nahi dekh rahe, to wo bacche ko to waise hi vibrations aake ideas aane lag jayenge ki haan I should do that. Hamare vibrations pahunchte hain, we need to always remember. हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इवन अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस नहीं पढ़ रहा ना, आपको दूसरे कमरे में बैठकर यही थॉट क्रिएट करना है, वो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन से फोकस्ड होके वो एक्यूरेटली सिर्फ पढ़ रहे हैं। दिस इज अ थॉट द पेरेंट हैज टू क्रिएट, दिस इज अ थॉट द टीचर हैज टू क्रिएट अक्रॉस द स्क्रीन, क्योंकि टीचर के भी तो संकल्प चल रहे हैं ना दूसरी साइड से कि इनका कैमरा ऑफ है, ये कहां गए, ये किधर। डोंट थिंक, सिर्फ कम्युनिकेट विद द राइट एनर्जी। अगर पेरेंट दूसरे कमरे में बैठकर सोचे पता नहीं पढ़ रहा है, कुछ और तो नहीं देख रहा, कोई फ्रेंड से चैट तो नहीं कर रहा, आपके वाइब्रेशंस ऑफ डाउट रेडिएट हो जाते हैं, और ये वाइब्रेशंस उस बच्चे को वो थॉट क्रिएट कर देते हैं, आप बहुत थक गए 5 मिनट किसी से बात कर लेते हैं। ये जो हमारे को थॉट्स आते हैं ना, कई बार हम कहते हैं ये थॉट कहां से आया मुझे, ये किसी ने भेजा होता है, भेजा मतलब हमारे बारे में सोचा होता है। So we have the power to communicate with our thoughts. So we need to think carefully. Don't think anything which you don't want your child to do. जो आप चाहते नहीं आपका बच्चा करे, आप उसको सोचे नहीं। जो आप चाहते हैं कि वो करे, आप सिर्फ वो सोचो और वो रेडिएट करो। वो नहीं भी कर रहा था तो वो करने लग जाएगा।
जब ये बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे बहुत बार हमारे साथ भी होता है। कभी कभार हम कोई चीज प्लान नहीं करते, फिर अचानक जब वो चीज कर लेते हैं लगता है अरे ये मैंने कैसे कर लिया, ये तो मेरे कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब जैसे आपने ये कहा कि हम लोग थोड़े क्रिएटिव हो जाएं, हम ट्रस्ट बिल्ड करें अपने बच्चों के साथ। टीचर्स जो आज एक चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके बारे में मैं अगले 5 मिनट में आपसे कुछ राय लेना चाहूंगा। ये एक कॉमन सी फैक्ट है जो हम देख रहे हैं कि टीचर्स को अभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। बच्चे क्लास में होते तो जैसे आपने कहा कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होता, बच्चों को देख के ही टीचर्स अंदाजा लगा लेते कि इसका अटेंशन कहाँ है, ये कहाँ है, क्या कर रहा है, पता चल जाता। अब क्योंकि वर्चुअल है तो एक पर्सनल कनेक्ट कर पाने में थोड़ी चैलेंज महसूस होती है। ऐसे में क्या हम स्पिरिचुअली या इमोशनली या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट हो, ऐसा कुछ सोच के हम शुरुआत करें या फिर कुछ ऐसी तैयारी के साथ हम हर दिन क्लास में आए, या ऐसा कुछ किया जा सकता है?
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टीचर है, फैसिलिटेटर है, उनका मन बहुत स्थिर होना चाहिए। सी, वाइब्रेशंस का कितना आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितना हमारे एंड पे स्थिरता होगी उतना सामने भी स्थिरता आएगी। जितना हम थोड़ा सा स्कैटर्ड होंगे इन आर माइंड उतना सामने भी स्कैटर्ड होंगे। ये हमें, ये एनर्जी है, दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी, इट वर्क्स लाइक दैट, है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि टीचर का माइंड बहुत स्थिर होना चाहिए। उन्होंने बहुत कमाल की है इस एक साल के अंदर, बिकॉज सडनली टू प्रिपेयर एवरीथिंग टू टीच ऑनलाइन एंड सडनली टू यूज प्लेटफॉर्म्स भी तो नए थे ना सबके लिए, सबने तो नहीं यूज किया हुआ, तो बहुत कमाल की है। लेकिन जितनी कमाल हम बाहर करते हैं ना, उसकी 10% कमाल हम अंदर भी कर लेना साथ में, तो डबल कमाल हो जाएगी। हम बाहर बहुत मेहनत करते हैं, हम पूरा पूरा डिजाइन सिलेबस चेंज कर लेते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स लर्न कर लेते हैं, हमने अगर यूज नहीं किए हो पहले तो वो भी हम सारा कुछ सीख लेते। वी डू मिरेकल्स आउटसाइड, इतना एफर्ट एंड हार्ड वर्क हम सिर्फ यहां नहीं, हमें लगता है ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो हमारे माइंड में चल रहा है ये बहुत मुश्किल है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कोई तरीका है, ऐसे कौन पढ़ाएगा, अच्छा कुछ दिन कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी साल साल हम ऐसे ही पढ़ाते रहे। सो देयर इज सो मच नॉइज इन आर माइंड, लॉट ऑफ नॉइज इन आर माइंड। तो वो जो नॉइज है वो बाहर की मेहनत का जो रिजल्ट निकलना चाहिए उसको थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा सा कम करता है। क्योंकि आप, इट्स लाइक खाना, चलो किसी ने हमारे लिए खाना बनाया है ना, अब उसने बहुत मेहनत की, 6 चीजें बना दी आपके लिए खाने के लिए, बहुत मेहनत की, सुबह से रात तक आपके लिए खाना बना रहे थे, ऑफिस से छुट्टी ली एंड फिर आप डिनर पर उनके घर गए, उन्होंने खाना बनाया, बहुत ब्यूटिफुली टेबल भी लेड आउट थी, लेकिन खाना खा के ना आपको इतनी फील नहीं आई वो खाना खाने के बाद, जितना उन्होंने जिस तरह से बनाया उन्होंने सोचा पता नहीं आपको कितना अच्छा लग जाएगा खाना खा के, बट ऐसा आपको फील आया नहीं ज्यादा। उसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत मेहनत की लेकिन अंदर उन्होंने छुट्टी भी लेनी पड़ गई, आज का मेरा एक दिन गया, अब ये मुझे डबल काम कल करना पड़ेगा, क्या है आजकल 6-6 सब्जियां बनानी पड़ती हैं, कहाँ गए वो दिन जहां 2 सब्जियों में काम हो जाता था और आज वो आई भी नहीं बर्तन करने के लिए। सो ऑल दैट नॉइज ऑफ द माइंड गोज इन टू द फूड। सो जो बाहर का एफर्ट होता है ना, उससे पहले ये थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि हमने चूज किया है ये मेहनत करना, अब इसको प्यार से एक्सेप्ट करके इसको वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देकर करें। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, अगर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उतना प्रिपेयर करना। अब अगर कोई आपके लिए 6 चीजों की जगह 2 चीजें बनाए सिर्फ, लेकिन वो 2 चीजें बहुत प्यार से बनाए एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेशन हो उस खाने में क्योंकि वो बहुत प्यार से बना रहे हैं, तो आपको खा के एक अलग ही आनंद आने वाला है वो खाने के बाद। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू ऑलवेज सी कि सक्सेस इज नॉट इन ऑल द वर्क दैट इज डन आउटसाइड, अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सक्सेस इज इन हु वी वर इन साइड व्हाइल वी वर डूइंग व्हाट वी वर डूइंग आउटसाइड। तो वाइब्रेशन वो है, तो सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है एज एजुकेटर्स कि हम उससे ट्रबल्ड नहीं हो रहे, हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे इस न्यू मैकेनिज्म को, हम बच्चों को डाउट नहीं कर रहे, हम अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस इज द सिचुएशन, दैट्स इट, एंड हम शुक्रिया कर रहे हैं। अरे वाह शुक्रिया, कितने सारे टूल्स हैं। सोचो कुछ साल पहले अगर ये हुआ होता और ऐसे कोई टूल्स ना हुए होते तो दो साल तो बच्चे पढ़ते ही ना। सो वॉट, हाउ मच ग्रेटिट्यूड वी शुड हैव फॉर ऑल दीज टूल्स, के कितना शुक्रिया हमें करना चाहिए। तो जब हम ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हम नहीं करते हम रेजिस्ट करते हैं, हम मेहनत करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस के साथ मेहनत करते हैं एंड डीप डाउन हम बिलीव करते हैं इससे तो बच्चों का फिर भी नुकसान ही हो रहा है, स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही गया। तो बढ़ ही गया ना, बार बार क्यों सोचना है वो वाली बात, बार बार सोच के उसमें रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी। सो वी ओनली हैव टू टेक केयर। तो अगर टीचर्स भी हमारे सारे और पेरेंट्स भी हर रोज सुबह 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी करें, जिससे हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, और पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से माइंड की वाइब्रेशन चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, आपकी ऑरा में एक हैप्पीनेस आएगी, एक प्योरिटी आएगी, एक क्रिएटिविटी आएगी। वो ऑरा बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। एंड अगर कोई आपके सामने ठीक से नहीं भी पढ़ रहा है, आप तब भी अंदर रेजिस्ट नहीं करने वाले, बोले इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, प्यार से उस बच्चे को फिर बुलाएंगे, फिर उसके साथ कुछ अच्छी सी बात करेंगे, नॉट रेजिस्ट। जितना हम रेजिस्ट करते हैं वाइब्रेशन डाउन होती है। तो अपनी वाइब्रेशन पर फोकस करें, हमारी स्थिति रेडिएट होती है, दूसरों की स्थिति पर असर करती है, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी का टाइम जरूर अपने लिए डालिए। दीज आर टाइम्स टू स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि ये समय हमें मिला है, हम घर पर हैं, हम ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उतना ट्रैवल वाला टाइम ही यूज कर लीजिए जो 15 मिनट ट्रैवल करना होता था, एंड इट यू विल स्टार्ट सीइंग अ शिफ्ट इन योर ओन सेल्फ एंड दैट शिफ्ट विल ट्रांसलेट टू एवरीबडी एल्स, उसका असर बच्चों पर पड़ेगा।
जी, जब आप ये कह रहे हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ, मैं अगर यहाँ से स्टेबल हूं तो शायद मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी जब मैं क्लास कराऊंगा या जब मैं लेक्चर दूंगा, जब मैं शुरुआत करूंगा कुछ चीज डिलीवर करने के लिए, तो बच्चों तक पहुंचेगा। और इसके लिए मैं यहां से अपने से ये शुरुआत करूं, और अगर वो करता हूं तो वो असर होता है। और मैं समझता हूं हम सब लोग ये चीज कर सकते हैं एज एजुकेटर्स।
हमारे पास एक, जैसे हम रोज मुरली स्टडी करते हैं ना सेंटर्स पे परमात्मा के महावाक्य, उसमें एक वाक्य बहुत पावरफुल है जो भी ऑलवेज रिमेम्बर। तो उसमें परमात्मा कहते हैं, जो आप बनाते हो, मतलब जो भी आप करते हो, जो आप बनाते हो वो सोना है, हाँ, लेकिन जो आपकी स्थिति है वो सोने के ऊपर हीरा है, और वो हीरा ही सबको आकर्षित करेगा। तो जो बना रहे हो वो सिर्फ गोल्ड है, बट आपकी वाइब्रेशन जो स्थिति है वो डायमंड है, और वो डायमंड सबको अट्रैक्ट करती है। तो वो डायमंड पर फोकस करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और जितना हम अपने इस स्थिति के हीरे पर फोकस करेंगे उतना हमें उसका बेनिफिट दिखेगा। तो हम बच्चों को भी उस पर फोकस करना सिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस होगा फिर ही तो हम उनको सिखा सकते हैं। हम हो सकता है हर सेशन के स्टार्टिंग में, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में करते हैं, हर सेशन का स्टार्टिंग और हर सेशन का एंडिंग हम एटलीस्ट 1 मिनट साइलेंस से करते हैं या 2 मिनट्स मेडिटेशन से करते हैं। उससे जो स्कैटर्ड माइंड भी होता है वो थोड़ा सा सॉर्टेड होके सेंटर्ड हो जाता है। तो वो भी अगर टीचर्स एक्सपेरिमेंट करके देखें, लेकिन उसके लिए उनकी अपनी कन्विक्शन चाहिए, वो कन्विक्शन ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो भी करके देख सकते हैं।
जब आपने ये साइलेंस वर्ड कहा तो मेरे को अचानक याद आया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक साइंस के टीचर थे, वो क्लास में आते ही ये नहीं कहते थे कि जैसे अक्सर होता है क्लासरूम में टीचर एंटर करते ही जोर से चिल्लाएंगे साइलेंस, चुप बैठो, तब सब लोग अपने अपने कुर्सी पे वापस चले जाते थे। बट इस टीचर की आदत हमने देखी कि वो आते और क्लास में आके चुपचाप खड़े हो जाते। जैसे ही हम उनको देखते कि वो चुप खड़े हैं तो हम ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाते, और फिर थोड़ी देर बाद वो शुरू करते। मैं ये डिफरेंस नोटिस कर पा रहा हूं कि ये कहना कि भाई चुप रहो, और खुद चुप रह के आप उस चीज को, एटमॉस्फेयर को साइलेंस से हम सबको वापस बांध लेना, जो हम स्कैटर हो गए थे उन सबको वापस रिकलेक्ट कर लेना, शायद हम अपने मन के साथ भी ये कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में ये चीज की जाती है हर क्लास और लेक्चर से पहले, तो हमारे टीचर्स और एजुकेटर्स भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल टूल टू स्टार्ट विद।
एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि हम एज एजुकेटर्स जब हम क्लास में आते हैं और हम बोलते हैं ना चुप करो, साइलेंस करो, अभी तो नहीं पता मुझे स्कूल में कैसे होता है, बट आई एम टॉकिंग 30 years back, तो टीचर आते थे तो इतना शोर होता था क्लास में, तो वो डस्टर लेके टेबल पे थक थक इतना जोर से, क्योंकि उनकी वॉइस भी उसको ओवरपावर नहीं कर सकती थी कि जो 40-50 बच्चों की आवाज होती थी, तो वो डस्टर से इतनी जोर से उसको ठोकते थे। अब कुछ बच्चे तो फिर भी नहीं लिसन करते थे, तो वो चौक उठाते थे और ऐसे जाके उस बच्चे को मारते थे। तो दैट वॉज ऑल आर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल साइलेंट। लेकिन वो फिर सिर्फ साइलेंस यहां से होता था ना, यहां तो बहुत शोर मच जाता था, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो टीचर आकर साइलेंट होकर खड़े हो गए, बट दैट साइलेंस इज नॉट हियर ओनली, वो यहाँ साइलेंट खड़े हो गए, तो वो साइलेंस वो एनर्जी सबको देता है, वो स्थिरता दूसरों को याद दिलाता है कि मुझे भी ऐसा स्थिर हो जाना है। तो शोर से साइलेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता, साइलेंस से उनके अंदर साइलेंस क्रिएट किया जा सकता है।
वाह, ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है कि हम शोर से आवाज करके साइलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, साइलेंस से साइलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक टेक होम टिप है दोस्तों, कि हम सब इस पर काम करें, क्योंकि नई चैलेंजेस हैं तो उसको डील करने के नए तरीके हमें यहां भी ईजाद करने पड़ेंगे, अपने लिए, अपने मन के अंदर भी, ताकि हम इन चीजों को डील कर सकें। अब मैं एक और एस्पेक्ट पे जा रहा हूं, जहां पर अब हम रिलेशनशिप्स को देखें। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमेशा ही एक बहुत ही भरोसे वाला रिलेशनशिप रहा है, और अक्सर बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते वो टीचर्स के साथ शेयर कर लेते, या फिर स्कूल जाते तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीजें शेयर करने लगते। अब वो चीज थोड़ा बदलने लगा है, अब टीचर्स के साथ ऑफ द क्लासरूम कोई चैट नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, तो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस नहीं होते, कॉरिडोर टॉक्स नहीं होते। वहां पर कुछ हमारे एजुकेटर्स ने ये बात रेज की है कि ऐसे में बच्चों के साथ जो हमारा रैपो है, जो हमारी बॉन्डिंग है, उसको हम कैसे बरकरार रखें, क्योंकि ओवर द ईयर्स उनको पता नहीं है कि कितने समय बाद ये चीजें वापस ठीक होंगी या वापस हम रेगुलर क्लासरूम मोड पे जाएंगे, बट इस दौरान हम उस रिलेशनशिप को मिस नहीं करें, वो बॉन्डिंग बनी रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूछते हैं।
आई डोंट नो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ये लोग कैसे स्कूल्स के सेशंस हो रहे हैं आजकल, बट इट वुड बी अ गुड आइडिया ना कि बीच बीच में हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप एक सेशन में कुछ पढ़ाएं ना, जस्ट हैव अ चैट, सब लोग बातें करें कि क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, अच्छा आपके घर में किसी को कोविड हुआ, कैसे हुआ थे, सो लेट्स डेडिकेट हाफ एन आवर इन 10-15 डेज जस्ट टू टॉक। आपको रोज बात नहीं करनी पड़ती है किसी से एक रिश्ता बनाए रखने के लिए, यू डोंट हैव टू। अगर आप 15-20 दिन में भी एक बार सिर्फ एक इनफॉर्मल कनेक्ट करते हैं एंड यू से आज हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, दैट्स इट, लेकिन उस दिन आपकी स्ट्रेंथनिंग वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि नेक्स्ट डे वो सिलेबस और जल्दी में कवर हो जाएगा आराम से, एंड सबकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट के बच्चे टीचर से बात करें, बच्चे सारे इकट्ठे भी तो मिल रहे हैं ना फिर उस तरह से, इट बिकम्स, बिकॉज ये तो बेनिफिट है इन प्लेटफॉर्म्स का कि एटलीस्ट यू फील कि हाँ आपने सबको देखा, आप सबसे मिले, सबसे आपने बात की, तो इट्स द नेक्स्ट बेस्ट नो टू मीटिंग अ पर्सन इन अ फिजिकल वे। और जहां की कनेक्टिविटी की बात होती है, रिश्ते तो यहां बनते हैं। अगर हम चाहें तो एक ही कमरे में बैठकर हम एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, क्योंकि हम मन में कनेक्ट ही नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, एंड अगर हम चाहें तो दो अलग अलग देशों में रहकर बहुत क्लोज कनेक्टेड हो सकते हैं। तो रिश्ता जो है वो फिजिकल मीटिंग पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो तो हमारी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट। अगर टीचर बात करती भी हैं, हंसते भी हैं, बच्चे भी हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर बच्चे या टीचर एक दूसरे के प्रति क्रिटिकल है माइंड में, जजमेंटल है माइंड में, डाउट कर रहे हैं, तो रिश्ता नहीं बनता है, वो तो सिर्फ एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन बनती है। कॉन्वर्सेशन एंड रिलेशनशिप दोनों चीजों में तो बहुत फर्क हो जाता है, वो तो हाँ चलो हमने बातें कर ली, रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग चीज होती है जहां देर इज अनकंडीशनल ट्रस्ट के मतलब ये कुछ मेरे लिए गलत बोल ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, तो वो हमें क्रिएट करना है। तो इसलिए जितना हम मेडिटेशन करके अपने माइंड को साफ रखते हैं, हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, उतना हमारे जो थॉट्स होते हैं ना किसी के लिए वो साफ होने लग जाते हैं, प्योर थॉट्स। सो विच मीन्स हम वो नहीं सोचेंगे जो वो है, मतलब अगर कोई आपका स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्चीवियस भी है, कुछ गलतियां भी करता है, कोई आपका स्टूडेंट झूठ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी करता है, संस्कार है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑनलाइन, दिस इज इवन वेन वी आर फिजिकली इन द स्कूल टूगेदर, हमें उनके बारे में वो हायर एनर्जी थॉट्स क्रिएट करनी है जो हम चाहते हैं कि वो बन जाए, कि नहीं ये बहुत पावरफुल बच्चा है, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड बच्चा है, ये हॉनेस्ट बच्चा है, मतलब हमारी थॉट्स, भले मुख से आपको उनको डिसिप्लिन भी करना है, अगर कोई झूठ बोल रहा है आपको उनको बोलना है कि ये नहीं है, वो आप यहां से डिसिप्लिन तो करना है, लेकिन यहां से हमेशा ब्लेसिंग्स दें। पावर ऑफ ब्लेसिंग्स हमारे रिश्तों को बहुत स्ट्रांग बनाती है। एंड ब्लेसिंग्स मतलब उनकी विशेषताओं को देखें और उनकी जो वो चीज है जो ठीक नहीं है आदत, उसके लिए भी एक हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट करें। ये थॉट क्रिएट करें तो आपसे जो एनर्जी एक बच्चे को मिलेगी, तो बच्चा भी एक जीवन जीने का तरीका सीख जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ माई थिंग्स आई एम नॉट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम हर और हिम, उसको बड़े अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे आपसे। रिश्ते उस पर बन जाते हैं और यही रिश्ते हम उसके बाद कॉलेज चले जाएं, हम यूनिवर्सिटी चले जाएं, हम अपने करियर में कहां के कहां चले जाएं। कोई भी हमें पूछता है कि आपको कौन से टीचर याद हैं अपने स्कूल के, तो वो कौन से टीचर याद होते हैं? वो टीचर नहीं होते जरूरी जिन्होंने वो सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ाया होता है, तो सब्जेक्ट ही याद नहीं होता, सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया था वो भी याद नहीं होता, वी आर टॉकिंग 10-20 ईयर्स लेटर। लेकिन हमें वो टीचर्स याद होते हैं जिनके साथ हमारा वो कनेक्ट। लेकिन वो उनके साथ ही ऐसा कनेक्ट क्यों बना हमारा? वाई वॉज इट नॉट द सेम विद एवरीबडी? क्योंकि वो हमारे बारे में कैसा सोचते थे अंदर, हमारा रिश्ता उसी पर बनता है। तो दिस इज द पावर वी हैव, इसलिए चेकिंग यहां थोड़ी सी करनी चाहिए। अगर हर एक टीचर हर एक बच्चे के लिए, पेरेंट हर बच्चे के लिए इस तरह से करे और बच्चों को भी फिर इस तरह से करना सिखाए। सपोज बच्चा अपनी टीचर की शिकायत करता है, ये भी एक नई चीजें होने लगी हैं आजकल। पहले जब हम स्कूल में थे तो हम तो डरते थे अपने टीचर से, मतलब, और हमारे पेरेंट्स भी एक्चुअली डरते ही थे टीचर से। डरते मतलब इट वॉज नॉट फियर बट इट इज अ रिगार्ड, इट इज अ रिस्पेक्ट कि नहीं वो टीचर है, वो मेरे बच्चे की टीचर है। इट वॉज लाइक दैट कि टीचर के साथ किस तरह से बात करते हैं, तो टीचर को एक बहुत बहुत ऊंचा नजरिया, एक बहुत ऊंचा पेडेस्टल रखा गया था, विच इज रियली नीडेड बिकॉज दे आर मोल्डिंग द चाइल्ड, दे आर मोल्डिंग द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। आजकल तो स्टूडेंट ही शिकायत कर देते हैं टीचर की और फिर पेरेंट भी स्कूल आ जाते हैं कि मेरे टीचर ने मेरे बच्चे के साथ इस तरह से बात कैसे की। सो वी आर देन डूइंग समथिंग विच इज नॉट हेल्दी फॉर द चाइल्ड, वो तो वो बच्चे के लिए अच्छा ही नहीं है। तो अगर आपका बच्चा अपनी टीचर की शिकायत करता भी है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे है या वो ऐसे है, पेरेंट का रोल है उस शिकायत के सर्कल में एक्सेप्ट करके उसमें इंटेंगल ना हो जाना और बच्चे की हाँ में हाँ नहीं मिलाना। आपको बच्चे के सोचने के तरीके को चेंज करना है कि नहीं ये है तो 10 चीजें और भी अच्छी हैं, लेट्स लुक एट ऑल द गुड साइड, लेट्स वी हैव टू टीच द चाइल्ड हाउ टू थिंक। उनको इनकरेज नहीं करना जब वो अपने टीचर के अगेंस्ट बोल रहे हो, क्योंकि वो जीवन जीने का तरीका सीख रहे हैं, वो रिश्ते बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये पेरेंटल एंड टीचर दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो बच्चों को सही सोचने का तरीका सिखाएं।
वाह, कितनी खूबसूरत बात है। इससे ये पता चलता है कि ये जो चैलेंज हम आज फेस कर रहे हैं, ये भी एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है। हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ अपने नजरिए को बदलकर। और इस बातचीत के दौरान इतनी खूबसूरत सी चीजें निकल कर आई हैं, ताकि हम सब अपने लिए कुछ काम करें, खुद अपने लेवल पे, हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ काम कैसे करें, पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, एजुकेटर्स क्या करें, सभी के लिए बहुत सारी चीजें निकल कर आई। और जो चैलेंजेस हमारे पास हैं उसको इफेक्टिवली हम अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, जो अदरवाइज भी है वो हम अपने थॉट लेवल पर जाकर बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी के आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे एजुकेटर्स से बातचीत की, और जो कुछ भी हमारे साथ ही सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सभी कुछ न कुछ ले जा रहे हैं, और कल से मैं समझता हूँ आज से ही वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उन चीजों को प्रैक्टिस भी करेंगे।
जैसे
आप ये बात कह रहे थे कि हर चीज की शुरुआत में और एंड में मेडिटेशन के साथ करने से हम एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हम सभी भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, टीवी पर या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। तो जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 4-5 मिनट्स के लिए आप भी हम सबको एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में ले जाएं, ताकि हम सब इसको प्रैक्टिकली करना सीख लें और हम हर दिन इस चीज को कर सकें।
थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे, 3 टाइम्स इनहेल एक्सहेल, बॉडी रिलैक्स। एंड फिर जेंटली अपनी अटेंशन को यहां पर लेकर आइए, सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये एनर्जी सेंटर है। और वहां पर बहुत धीरे से विजुअलाइज कीजिए एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे एक सितारा, अ स्टार। कोई प्रेशर नहीं, बहुत धीरे धीरे हो जाएगा, दिखाई देगा। और उसको देखते हुए जेंटली हम ये थॉट्स क्रिएट करेंगे। आप सुनते सुनते इनको अंदर रिपीट कर सकते हैं स्लोली, और इसको विजुअलाइज भी कीजिए। I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फील कीजिए इस एनर्जी को। I am a powerful being. शक्तिशाली। जीवन की हर सीन बस एक सीन है। मैं शक्तिशाली हूं। हर सीन, हर सिचुएशन उसके साथ अडैप्ट करने की, उसे एक्सेप्ट करने की, उसे अंडरस्टैंड करने की और उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की शक्ति मेरे अंदर भरपूर है। इट्स माय नेचर। हर सीन जो आई है इसमें मेरा कल्याण है। ये सीन मेरे बेनिफिट के लिए है। आई एम कमिंग आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सीन। मैं इस सीन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूं। मैं हर एक को एक्सेप्ट करती हूं। मेरा मन शांत और स्थिर है। जीवन की हर सीन परफेक्ट है। हर सीन परफेक्ट है। Every scene of my life is perfect. Om Shakti.
Om Shanti. Thank you so much, Sister Shivani, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दोस्तों से बातचीत करने के लिए जिन्होंने इस कॉन्वर्जेशन में उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
थैंक यू सो मच।